संजय ये क्या? नहीं तो ऐसा जो दो नंबर है ना उसकी करो कॉपी, बाकी एक की छोड़ दो। हाँ भाई, माताएं आगे आएंगी हिंदी वाली या पीछे देना है? पीछे रहना, और मुझे कुछ ऐतराज नहीं, पर मुरली रिपीट करेंगे तो आप भी हिस्सा लें उसमें। चलो भाई सुनाए, जब तक माताओं में चेतना है जरा, क्या अच्छा लगा आप ही सुना दो सबसे पहले। बहुत अच्छा, बोलो सबसे आगे वाला बोलेगा। बहुत अच्छा, बोलो भाई। रिटर्न जर्नी तो आगे बोलो, पूरा बोलो। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। माताएं सेट हो गई, बोलो अब जिसको आता हो, कुछ भी याद रहा हो मुरली की पॉइंट सुनाओ। हाँ, सुमान की सीट पर सेट रह के ऑर्डर करेंगे तो शक्तियां, बहुत अच्छा ये महावाक्य है, इसको आप अपने पास नोट भी कर लें, रोज पढ़ा करें। अगर मास्टर सर्व शक्तिवान की सीट पर सेट रहो तो शक्तियां बंधी हुई हैं आने के लिए। बहुत अच्छे शब्द हैं ये, हमें एक एक शक्ति को बुलाने की भी जरूरत नहीं। पीछे वाली माताएं बोलिए, अब आप आ नहीं रही आगे डर से, बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या याद रहा कल? बाबा ने पांच स्वरूपों की ड्रिल कराई स्वमान कहकर। पहला कौन सा? ठहरो, माताओं से पूछवाना जरा। पीछे वाली, पीछे वाली बोलेंगे, वो डर रही है ना, बोलना नहीं जानती, बुलवाना है ना उनसे, बोलो पहला। अरे पीछे देख रही माता है, चलो भाई पीछे वालों में दम नहीं, आगे वाले बोलो। पहला अनादि स्वरूप, और अनादि स्वरूप में क्या मुख्य बात कही? नहीं, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, नहीं, ऐसी बात जो आत्मा को जागृत करती है, अभ्यास करने में आनंद आ जाता है। भाई बोलो, बाबा के साथ रहने के कारण चमक बहुत है, जैसे जैसे आकाश में कुछ कुछ सितारे बहुत चमकते हैं। तो अपने अनादि स्वरूप को का अभ्यास करते हुए हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं बहुत चमकती हुई आत्मा परम धाम में हूं, बहुत आनंद आएगा। और जैसे बाबा की चमक उस पर पड़ रही है, सितारे क्यों चमकते हैं आसमान में? सूरज का प्रकाश उन पर पड़ता है ना, वो उतने ही चमक रहे हैं। सत्य तो यही है, जिस तारे पर सूरज का प्रकाश जितना ज्यादा पड़ता है वो उतना ही ज्यादा चमकते हैं। आत्मा पर भी परम धाम में बाबा की लाइट पड़ रही है, जितनी ज्यादा पड़ रही है उतनी आत्मा चमक रही है। ये बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा। दूसरा अभ्यास हमारा अनादि स्वरूप, कौन सा है वो? देव स्वरूप। उसमें कौन सी बात कही? प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान, संपूर्ण सुख दुख का नाम निशान नहीं, वो अपना स्वरूप सामने आ जाए। बाबा तो कल ड्रिल कराई, सब जानते ही हैं, देख लो अपना स्वरूप सामने। तीसरा पूज्य स्वरूप, उसमें कौन सी बात थी? हाँ जितना कायदे अनुसार तुम्हारी पूजा होती है धर्म पिताओं की और जो भी हैं गुरु आदि किसी की नहीं होती। धर्म पिताओं की पूजा होती है, बुद्ध धर्म में तो बुद्धि है सब कुछ उनके लिए, तो किसी की ऐसी नहीं होती। और उसके बाद नहीं, रिटर्न जाने से पहले और कुछ है, ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्या विशेष बात बताई, नहीं बहन ने ठीक बोला, बाबा ने स्वयं तुम्हें कौन सी जायदाद दी है, पवित्रता की, ये भी चमक है ना, जायदाद कहा बाबा ने इसको, क्या मिलता है पवित्रता से प्रैक्टिकल में, पवित्र आत्मा होने के कारण तुम क्या बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान। बहुत अच्छे रहस्य हैं इन सब बातों में, छोटी नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान वही ज्यादा बनते हैं जिनकी पवित्रता जितनी श्रेष्ठ है। और पवित्रता पर कल परसों ही मुरली में बच्चू बादशाह पीरू वजीर याद है, सबको याद रहा होगा ना, काम क्रोध, ये बच्चू बादशाह पहला, दूसरा पीरू वजीर, जिसके पास ये दोनों हो उसका बेड़ा गर्क, बेड़ा पार नहीं उसका बेड़ा गर्क। बाबा ने कहा इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन भी है, बादशाह और वजीर का वैसे भी निरंतर कनेक्शन रहता है ना, जिसके पास काम ज्यादा उसके पास क्रोध ज्यादा, काम विकार शांत, क्रोध भी शांत, चित्त भी शांत, कर्मेंद्रियां शीतल। काम महाशत्रु को जीतने से ही संपूर्ण विजय हो जाती है, आत्मा को स्वराज अधिकारी बनना भी सहज हो जाता है। हम इस पर बहुत ध्यान देंगे, पवित्रता सुख शांति की जननी भी है। बाबा की मुरलियां चल चुकी हैं, जरा भी जीवन में दुख की लहर आती है तो समझो पवित्रता की कमी है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझो पवित्रता की कमी है, खुशी नहीं हो रही है, पवित्रता की कमी है। खुशी क्यों गुम होती है, एक मूल कारण पर ध्यान दें हम, एक ही केवल, दूसरों से बहुत कामनाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस, कामना पूर्ण नहीं होती, क्रोध भी आता है, खुशी गुम हो जाती है। और कामना एक स्वरूप है काम का, याद होंगे आपको बाबा की मुरली, काम ज्यादा है तो कामनाएं भी ज्यादा हैं। तो कल बाबा ने हम सबको क्या लहर फैलाने को कहा, ठीक बोल रहे, पूरा बोलो, जैसे 75 वर्ष की प्लेटिनम जुबली की सेवाओं की लहर फैलाई है वैसे ही चेहरे द्वारा सेवा करनी है, ये लहर फैलाओ। कौन सा चेहरा, खुशनुमा चेहरा। तो खुशी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और अगली पॉइंट थी स्वराज अधिकारी की, कर्मेंद्रियों पर विजय, मन बुद्धि संस्कारों के मालिक, चारों बात कही, मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियां, चारों के जो मालिक बन जाते हैं वही स्वराज अधिकारी हैं। मन के लिए क्या कहा, मन मन मेरा है, मैं मन नहीं, तो मन को कंट्रोल करो। पीछे भी इन पर बहुत बाबा कह चुके हैं, ये बात चलती आ रही है इस सीजन में, बाप समान, स्वराज अधिकारी, मन के मालिक, फरिश्ता स्वरूप ये सब इस बार की लहर हैं बाबा की। बाप समान बनने के लिए फिर से प्रेरणा दी, 2 मास का होमवर्क फिर से याद दिलाया। कौन सा है 2 मास का होमवर्क? स्वराज अधिकारी और व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि व्यर्थ ही तो सब गड़बड़ कर रहा है। आत्मा की शक्तियां कहां नष्ट हो रही हैं? व्यर्थ में। सेंटर्स के लिए क्या कहा? निर्विघन और व्यर्थ से मुक्त। और एक ही रहस्य से भी जान लें, सेंटर हो या अपना व्यक्तिगत जीवन हो, व्यर्थ से मुक्त माना विघ्नों से मुक्त है ना। यही बात क्या समझती है माताएं, चाहे आपके परिवार की बात हो, जितनी आत्मा व्यर्थ से मुक्त उतनी ही निर्विघ्न जीवन, परिवार निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न। तो बाबा तो देखो कितना पॉजिटिव है, ये हो जाएगा ये सब, कितने सालों से पॉजिटिव है बाबा, आशावान है सब हो जाएगा, होना ही है, व्यर्थ से मुक्त होना ही है। बाबा मधुबन वालों को कहा करते थे, मैं ये बात सुनाया करता हूँ, जिस दिन मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा ये स्थान जादू की नगरी बन जाएगा, लाइट हाउस भी जादू की नगरी भी, क्योंकि अगर सभी आत्माएं श्रेष्ठ स्वमान में हो तो देखो वाइब्रेशंस कितने पावरफुल हो जाएंगे। जैसा जब हम यहाँ मान लो 100 भाई बहने बैठकर पावरफुल योग करें, सबका पावरफुल योग हो, तो वाइब्रेशंस कितने सुंदर हो जाते हैं हॉल के। सभी आत्माएं अगर ऐसे ही श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगी तो जैसे योग के वाइब्रेशंस होते हैं, निरंतर उस स्थान के वाइब्रेशंस वैसे ही बन जाएंगे। मधुबन हो या कोई भी स्थान, आपका घर हो या सेवा स्थान, उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे और वहां आने वालों को बहुत सुंदर अनुभूति होगी। हमें ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा, फिर तो लोग हमारे आंगन में प्रवेश करेंगे और बाबा के हो जाएंगे, कहेंगे हमें सिखाओ योग, हमें दे दो ज्ञान, और बाबा को स्वीकार कर लेंगे। तो वो समय आना तो है, पर हमें बहुत समीप उसको लाना है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और भी कोई बात थी, किसी को याद हो? हाँ, ज्वालामुखी योग को भी अंडरलाइन कराया। हाँ, इससे 2 फायदे होंगे, संस्कार परिवर्तन, और क्या होगा, हमसे जो किरणें निकलेंगी प्रकाश फैलेगा, वो दूसरों को अनुभव होगा। क्या है ज्वाला स्वरूप योग? बिल्कुल ऐसा बताओ जो समझ में आ जाए, ये है, बोलो है, लगन में मगर। और अच्छा बताओ, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब सुनते हुए भी बहुतों को समझ में नहीं आता, आखिर ये है क्या? है ये बीज रूप ही, पहले आत्मा स्वयं परिस्थित हो जाए लंबा समय, और उसमें हम यही संकल्प आजकल रखेंगे, मैं स्वराज अधिकारी हूँ और मैं बहुत चमकदार हूँ, तेजस्वी हूँ। ज्वालामुखी के लिए सहज बात याद रखेंगे, संकल्प शांत हो जाएं, हम एक संकल्प में स्थित हो जाएं, फिर हमें ऐसा लगेगा कि संकल्प है ही नहीं, केवल हम स्वरूप पर स्थित हैं, आत्मा के स्वरूप पर स्थित, और सरल भाषा में जैसे हम आत्मा के स्वरूप को देख ही रहे हैं। उसे किरणें फैल रही हैं, उसका तेजस्वी स्वरूप जैसे हमारी नजरों में समाया हुआ है, वो हमारी नजर तीसरा नेत्र। उसके लिए हम शुरू में दो चार सुंदर संकल्प रखें, जैसे मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मैं बहुत तेजस्वी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैंने इस तन में प्रवेश किया है, मैं इस तन से न्यारी हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो कुछ क्षण सुंदर संकल्प क्रिएट करें, उससे स्थिति में हम स्थित होंगे और संकल्प शांत हो जाएंगे। फिर दूसरे अभ्यास, बाबा के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर। वही बात जो रोज मुरलियों में आती है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, कितने सिंपल शब्द है। तो आत्मा केवल समझना नहीं, आत्मा पर स्वयं को स्थिर करना, और ऐसे ही बा के बारे में कुछ सुंदर संकल्प करते हुए बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देना। ऐसा करने से जो कुछ बाबा में है वो आत्मा में आने लगेगा, उसकी किरणें स्वतः ही, उसकी एनर्जी, उसकी शांति, उसकी प्योरिटी स्वतः ही आत्मा में समाने लगेगी। ये है ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप योग। इसके लिए क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए? हाँ, व्यर्थ से मुक्त, लेकिन बहुत प्रैक्टिस, जिसको ये लगन लग जाए कि हमें बार बार आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करना है, अपने को बाबा के स्वरूप पर स्थिर करना है। सारा दिन अगर ये अभ्यास चलता रहे तो बैठने पर भी लंबा समय ये स्थिति बन जाएगी, नहीं तो मन भटकता रहेगा। व्यर्थ से मुक्त होना और स्वराज अधिकारी बनना, व्यर्थ से मुक्त होना किसके हाथ में है? माताएं बोलो, सबका आपके हाथ में नहीं। माताएं बोलो, व्यर्थ से मुक्त होना किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। व्यर्थ को बढ़ावा देना भी अपने हाथ में, व्यर्थ से मुक्त रहना भी अपने हाथ में, चित्त को शांत रखना भी अपने हाथ में, और उसको परेशान कर देना भी अपने हाथ में है या नहीं? क्या समझते हैं भाई, है या नहीं? देख लो, जो लोग परेशान रहते हैं उनको दूसरा कोई नहीं करता, वो खुद ही रहते हैं, और जो शांत रहते हैं, शांत रहना दुनिया में माना जाता है, साइलेंस इज गोल्ड। मुझे याद आ रहा है, एक भाई नीचे है, वो कल बाबा के समय बाबा बैठे किसी से मिल रहा, तो वो जब किससे मिलता है तो दूसरों की नहीं सुनता, अपनी अपनी सुनाता है। मैं एवर हैप्पी हूँ, अरे कुछ भी हो जाए मैं एवर हैप्पी हूँ, मैं सदा ही हैप्पी रहता हूँ, खुश रहता हूँ। पर उसको लोग जानते हैं, वो खुद तो खुश रहता है पर दूसरों की खुशी छीन लेता है, लोग हंसते ही रहते हैं उसकी बात सुन के, क्योंकि उसे क्या कहे कोई। तो हमें, मुझे ये बात बाबा की मुरली सुन के याद आ रही थी कि खुशनुमा चेहरा सर्विस करे। हम खुद तो खुश रहते हों, दूसरों की खुशी छीनते हों, तो ये खुशी कैसी हमारी? ये खुशी बाह्य मुक्ता की खुशी है, दिखावे की खुशी। में बहुत खुश रहे तो हंसते रहेंगे, दिखाते रहेंगे ओ मैं बहुत खुश हूँ, जो खुश उसे बोलने की जरूरत है? बोलने से ही तो बाबा ने मना कर दिया कि चेहरा सर्विस करेगा बोल से ही तो सेवा कम हो रही है। तो जो बहुत खुश है उसका, उसकी खुशी तो उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट होती है ना, चमक। देखो, किसी का उदास चेहरा हो तो भी तो पता चलता है ना, किसी के चेहरे पे टेंशन हो, मन में टेंशन हो, तो भी लोगों को पता चलता है। खुशी, आंतरिक खुशी, जिसमें प्योरिटी समाई हुई है, जिसमें योग युक्त जीवन समाया हुआ है, जिसमें सुंदर चिंतन समाया है। सब देख सकते हैं, जब हम सब मुरली सुनकर जाते हैं सवेरे, सबके चेहरे बदले हुए होते हैं, सबके, ऐसा नहीं किसी का नहीं, सबके, क्योंकि मुरली से जो श्रेष्ठ चिंतन मिलता है, मुरली से जो सुख मिलता है, वो चेहरों पर आ जाता है। आत्मा की स्थिति चेहरों से प्रतिभासित होती है, दिखाई देती है। तो हम अपने चेहरे को खुशनुमा, चेहरे को क्या, स्वयं को खुशी से भरपूर करें। केवल खुशी नहीं, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, सब, सबका मिला जुला स्वरूप एक अतीन्द्रिय सुख होगा, एक सूक्ष्म बहुत चमकीली खुशी होगी, चमकीली खुशी जो चमकेगी चेहरे से, जिससे दूसरों को, जिसको इंग्लिश में ग्लो कहते हैं, तेज हमारे चेहरों से नजर आएगा। ये सब होने भी जा रहा है, लेकिन जो लंबे काल से इसका अभ्यास कर रहे हैं, जो व्यर्थ से मुक्त हो रहे हैं, उनके चेहरों पर ये चमक दिखाई देगी। नहीं तो क्या होता है, बहुत खुशी भी हो और व्यर्थ संकल्प चल जाए तो सारी वो एनर्जी नष्ट हो जाती है ना। तो विशेष अटेंशन हमें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखने पर करना है। फिर से सोच लें, ये कहने से नहीं होगा, एक एक संकल्प को चेक करने से भी नहीं होगा। हम अपने मन की अच्छी दिनचर्या बनाकर रखें। मुरलियां चल चुकी हैं इसी सीजन में। मन को कुछ काम दें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो स्वतः ही मन व्यर्थ से मुक्त रहता है। मन को हम खाली छोड़ देते हैं, लंबा काल से हमने मन को खाली छोड़ दिया है, इसलिए मन भटकना तो उसकी नेचर हो गई है। अब स्थिर रहना सतयुग में उसकी नेचर थी, कलयुग में उसकी नेचर भटकने की हो गई है। क्यों भटकता है मन? ठीक आप बोल रहे हैं, पर मैं एक दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं। आत्मसंतोष के लिए, आनंद के लिए, जब उसे अपने में ये सब चीज नहीं मिल रही तो वो बाहर निकलता है। इसको बहिर्मुक्ता कहा, शास्त्रों में भी ये शब्द है, बाह्य मुक्ता। आत्मा जब अपने में संतुष्ट हो जाए तब उसको मन को भटकने की इच्छा नहीं होगी, तृप्त है वो। तो हम अपने मन को कुछ काम देकर रखें, ये अभ्यास हमें करने हैं। फिर भी हमारे चारों ओर, क्योंकि व्यर्थ बहुत है, संसार ही व्यर्थ का भंडार बना हुआ है, व्यर्थ के अलावा दुनिया के वातावरण में और कुछ नहीं है। देखो हम तो कितने अच्छे हैं, अब बाहर देखो दुनिया में, समर्थ का, अच्छे संकल्पों का किसी को पता है? पता भी नहीं। करने की बात तो छोड़ो, उन्हें ये भी पता नहीं वो व्यर्थ में रहते हैं। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं, अपने को आगे रखना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं ये कमजोरी है, ये व्यर्थ है। तो बाहर के व्यर्थ के वाइब्रेशंस के कारण कभी कभी न चाहते भी ब्राह्मण आत्माओं के मन में भी व्यर्थ चलने लगता है। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। इन दो बातों को दो मास के लिए हम अपना आधार बना लें, मूल मंत्र बना लें, और ये अनुभव करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका नशा बढ़ाते चलने से सहन करने की शक्ति, समस्याओं का सामना करने की शक्ति, कुछ भी सुन लेने की शक्ति, ये स्वतः ही काम करती हैं, आ जाती हैं, माना स्वतः ही काम करेंगी। हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि सहन शक्ति आओ, सहन शक्ति ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में हैं। ये सीट हो गई हमारी। तो बहुत अच्छे शब्द, बहुत बार बाबा के अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। कभी ये शब्द भी आया है कि तुम्हारे बुलाने से तो बाप भी आ जाता है, तो क्या तुम्हारे बुलाने से शक्तियां नहीं आएंगी। कितने अच्छे शब्द हैं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल जो बाबा ने कहा इस सीट पर रहो तो शक्तियां बंधी हुई हैं तुम्हारे पास आने के लिए। ऑटोमेटिकली हमारी शक्तियां काम करेंगी। मान लो हमें शरीर में कोई बहुत बड़ी पीड़ा हो गई, कष्ट होने लगा, तो हमारी सहन शक्ति ऑटोमेटिकली काम करेगी। हम आराम से सहन करेंगे, देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि हम कुछ सहन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई बड़ी समस्या जीवन में आ गई, बड़ी बड़ी आ जाती हैं, अचानक आ जाती हैं, परिवार वाले जानते हैं, आती है ना अचानक, मन न चित कुछ भी अचानक हो जाएगा, उसको सामना सहज भाव से कर पाएंगे। सामना करने का यहाँ अर्थ है उससे हमारी स्थिति बिगड़ेगी नहीं। समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है स्थिति अचल अडोल शांत रहना। और अगर हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो सामना करने की शक्ति हमारे पास नहीं रही। किसी ने हमें कुछ कह दिया, बुरे वचन बोल दिए, हम उनको संभालें, ये शक्ति ऑटोमेटिकली काम करेगी, वो संकल्प बार बार चलते नहीं रहेंगे। जैसे वो जन्म खा लेते हैं, हजम हो जाता है, और यदि हजम नहीं होता तो पेट में क्या क्या होता है पता है ना सबको। किसी ने हमें कुछ शब्द बोल दिए, हम हजम न कर पाए तो क्या करते रहेंगे अंदर, वो भी गुरगुर करते रहेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही संभालिए, माना शांत हो गया चित, तो हम अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे तो ये शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारे साथ काम करेंगे। बहुत अच्छा सब अनुभव करें। सहयोग हमें लेना भी होता है, देना भी होता है, कार्यों में, सेवाओं में, लौकिक दुनिया में, परिवारों में सहयोग की जरूरत रहती है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे उन्हें सहज ही सबका सहयोग मिलता रहेगा। अनुभव करने की बात है। बाबा की मुरली मुझे याद रहती है, मेरा अपना अनुभव हो गया था बहुत सुंदर। तो मैं किचन में अकेला काम करता था, कभी कभी काम ज्यादा होता था, टोली बनानी, चाय बनानी, भोजन भी बनाना, 150, 200, 250 तक मैं अकेला ही करता रहा। तो मुझे कभी कभी सहयोग की जरूरत पड़ती थी। तो देखो क्या होता था, बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही मुरली में, कल्प वृक्ष का बीज है शिव बाबा, बीज को अगर स्नेह का पानी देंगे तो फल के रूप में हर पत्ते का सहयोग स्वतः ही मिलता रहेगा। ये बहुत सुंदर लगी, समझ में आ गई। बीज को स्नेह का पानी देना माना योग युक्त होना। तो बीज से कनेक्शन जुट गया तो मैं देखता था कोई ना कोई मुझे मदद करने आ रहे हैं। तब सेवादारी नहीं होते थे, सेवादारियों की ये प्रथा बहुत बाद में शुरू हुई है। तो यज्ञ वाले ही कोई भी आके मुझे मदद कर रहे हैं, कोई सब्जी धो रहा है, किने चावल धो दिए, किने लकड़ी ला दी, तब लकड़ियों का काम था ना, किने लकड़ी ला दी, किसने और कुछ मदद कर दी, सहज काम होता रहा। तब सारे काम, सब मदद लेनी होती थी पार्टी वालों से, अलग से सेवाधारी नहीं होते थे। जो पार्टी आई हुई है 50-60, इससे ज्यादा तो होती नहीं थी, कभी 100-150 बस इतने, तो उनमें से ही लोग आ जाते थे। तो कोई भी आता था हमें मदद करने के लिए, बिना मांगे बिना किसी को कुछ कहे। तब से ये पक्का विश्वास हो गया और अब बाबा ने इसमें जोड़ दिया। तब तो इस बात का किसी को पता नहीं था, मास्टर सर्व शक्तिवान का। तो अगर हम मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहेंगे तो सहयोग मिलता रहेगा और हमारी भी नेचर दूसरों को सहयोग देने की हो जाएगी। दोनों चीजें आएंगी। बहुतों की नेचर दूसरों को सहयोग देने की नहीं होती और बहुतों की नेचर दूसरों को सहयोग देने की होती है। इससे ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी, इस बात पर अभी थोड़ा सा ध्यान और देना है। हम कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। मुझे बाबा की एक बात बहुत बहुत अपील की, प्रिय लगी, आपको भी लगेगी। साकार मुरली में महावाक्य आया था, शायद 2 साल पहले की बात है। देखो मुरली तो 5 साल की रिपीट हो रही है, 5 साल से ज्यादा की मुरली हमारे पास नहीं है यज्ञ में, लेकिन कभी कभी वही मुरली से हमें नई बातें मिल जाती हैं। अब मैं उन मुरलियों को 8-9 बार सुन चुका हूं और मैं सुनता ही हूं, मैं मिस नहीं करता लगभग, लेकिन फिर भी कोई बात बिल्कुल नहीं मिलती है। ऐसा लगता है ये तो कभी सुनी नहीं। तो मैं आपको एक बात सुना रहा हूं, आपको भी लगेगा ये बात कभी सुनी नहीं जाती। वासुदेव बाबा ने बोला, मैंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, शुरू की बात है, और अपनी पवित्र किरणें इसको दे दी और इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। देखो जो पुरुषार्थ और आत्माओं को जीवन भर करना पड़ता है, कर्मेंद्रियों को शीतल करने का बहुत बड़ी चीज है ये, काम वासना को संपूर्ण रूप से शीतल कर देने का, वो ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ने पहले दिन कर दिया था। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शरीर चाहिए था ना बाबा को, शरीर पतितन नहीं, संपूर्ण पवित्र शरीर भी भगवान बैठेगा ना, तो उसमें पवित्रता के वाइब्रेशंस दे दिए और अंग अंग को शीतल कर दिया। कई लोग पूछते हैं ना आजकल, एक प्रश्न पूछा करते हैं कि बाबा जब आता है झटका लगता है दादी को, पहले तो नहीं लगता था, ऐसे होता है ना, क्यों? हाँ ठीक बोल रहे आप। देखिए कल सवेरे की या परसों सवेरे की मुरली थी, ब्रह्मा बाबा हस्ती, मैं इसके तन में प्रवेश करता हूँ, 2 हस्तियां सबसे बड़ी हस्ती। तो क्या होता है, आज या कल बाबा के लिए में ये भी था, मैं केवल ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। क्यों आता हूँ? क्योंकि उसी का ब्रेन, ये हिस्सा, इसको ही तो यूज कर रहा है ना बाबा, वो इतना पावरफुल है कि सर्वशक्तिवान उसमें आ सकता है। यदि किसी कमजोर आत्मा के तन में आ जाए तो क्या होगा, उसका ब्रेन ही फट सकता है। इसलिए जो मोस्ट पावरफुल है श्री कृष्ण की आत्मा, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, 2 महान शक्तियां अब दादी के तन में आती हैं। दादी बहुत पवित्र आत्मा है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, ब्रेन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ये तो शरीर की गति है ना, नेचुरल गति है ना, तो थोड़ा सा झटका लगता है। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूज होने की बात नहीं। लोग संशय उठाने लगते हैं फटाफट। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी देख के ज्यादा ही सोचते हैं। पहले तो ऐसा, एक ने कहा 2 बार झटका लगता है। अरे भाई कितनी बार भी लग जाए तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो सीधा सा कहते 2 आए हैं ना, इसलिए 2 बार लग गया, क्या क्यों परेशान हो रहे हो? तो कई लोगों को संशयात्मक संकल्प करने की बहुत आदत पड़ी होती है, छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं और जो सुख मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये सब भी व्यर्थ है। अरे भगवान बैठा है, साधारण तन में आ गया है, उसको देख देख के आनंदित होते रहो। मैं तो बार बार स्क्रीन पर देखता हूँ, कैसा सुंदर है, भगवान बैठा है कैसे साधारण रूप में, कोई सोच भी नहीं सकता कि कहीं इस तरह भगवान बैठा होगा। मजा आ जाता है, दो घंटा मुरली सुनना माना आनंदित। इसलिए मुझे और कुछ इच्छा रहती ही नहीं कि स्टेज पे भी जाऊं, हालांकि मुझे जाने से कोई रोकता नहीं, मैं रोज जा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकता, न वहां के सिक्योरिटी वाले न कोई और। लेकिन मुझे इतना रस आ जाता है ये देख देख कर कि बाकी सब चीजें छोटी लगती हैं। तो हम कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, कानों से व्यर्थ सुनने पर विजय सबसे इम्पोर्टेंट, और मुख से व्यर्थ बोलने पर विजय। आंखों की बाबा तो पहली बात कहता है, पर मैं इसको तीसरा नंबर दे दूं क्योंकि व्यर्थ की बात चल रही है ना, सुनने से ज्यादा व्यर्थ पैदा हो रहा है। और देखना भी बहुत कुछ, देखकर क्वेश्चन उठना माना व्यर्थ को बढ़ावा मिलना। हम सब कुछ देखते हुए भी साक्षी दृष्टा हो जाए, ये ज्ञान युक्त आत्मा की निशानी है। जो कुछ हो रहा है सब ठीक, आनंद लो, परेशान क्यों। जब शिव बाबा सब कुछ देखकर आनंदित है तो हमें परेशानी क्या जरूरत है भाई, मालिक निश्चिंत है। और जो निमित्त हैं वो परेशान हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए ना। किसी फैक्ट्री का मालिक मौज कर रहा हो और उसके अधिकारी परेशान रहते हो, ठीक रहेगा, जिम्मेदार तो मालिक है ना। हम भी इस तरह कर्मेंद्रियों के रसों पर विजय प्राप्त करें। तो अलग ही एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, सब अपने अपने से चिंतन करेंगे। ओम शांति।